ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पूर्व कृतं यत् येन पूर्व कृतं यत्तद्
येन पूर्व कृतं यत्र।
Give it some enthusiasm, please.
उत्साह से बोलिए सब।
येन पूर्व कृतं यत्तद्
येन पूर्व कृतं यत्र।
रजना कृष्ण वैरिणः
रजनात् कृष्ण वैरिणः।
It's vairinaha. You see, I don't know how it is shown in Hindi, but when there's a dot under the H, then and the vowel before the H, then the vowel is repeated at the end. I don't know how it's expressed up there, but this is the way it is pronounced.
So ye verina shabd hai last mein, isko verina karke uchcharan kijiye.
Rajana Krishna Vairinaha.
Rajana Krishna Vairinaha.
Jahustente tad atmanaha.
Jahustente tad atmana.
Kita pesha krito yata.
Kita pesha krito yata.
By translation, not only Shishupal and Dantavaka, but also many, many other kings who acted as enemies of Krishna attained salvation at the time of death. Because they thought of the Lord, they received spiritual bodies and forms the same as His. Just as worms captured by a black drone obtain the same type of body as the drone. Okay, translation.
Hindi mein hua iska? ना केवल शिशुपाल तथा दंतवक्र अपितु अन्य अनेकानेक राजा जो कृष्ण के शत्रु बने हुए थे अपनी मृत्यु के समय मोक्ष को प्राप्त हुए, क्योंकि वे भगवान के विषय में सोचते थे, अतः उन्हें भगवान जैसा आध्यात्मिक स्वरूप प्राप्त हुआ। जिस तरह भृंगी द्वारा पकड़ा गया कीड़ा भृंगी का शरीर प्राप्त कर लेता है।
Read the purport, please.
तात्पर्य, यहाँ पर योगिक ध्यान का रहस्य समझाया गया है। असली योगी अपने हृदय में सदैव विष्णु के स्वरूप का ध्यान करते हैं, फलस्वरूप वे मृत्यु के समय विष्णु के स्वरूप का ध्यान धरते हुए अपना शरीर त्याग कर विष्णु लोक या वैकुंठ लोक को प्राप्त करते हैं, जहाँ उन्हें विष्णु जैसा ही स्वरूप प्राप्त होता है। हम छठे स्कंध से देख चुके हैं कि जब अजामिल का उद्धार करने के लिए वैकुंठ से विष्णु दूत आए तो वे विष्णु सरीखे ही लग रहे थे। उनके भी चार हाथ थे और उनका भी स्वरूप विष्णु जैसा था। अतः हम यह निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि यदि कोई विष्णु का चिंतन करने का अभ्यास करे और मृत्यु के समय उन्हीं विचारों में पूर्णतः लीन रहे तो वह भगवद्धाम वापस चला जाता है। यहाँ तक कि कृष्ण के शत्रु भी यथा राजा कंस जो भयवश कृष्ण का चिंतन करता था भगवान के ही समान आध्यात्मिक स्वरूप को प्राप्त किया।
गुरु परंपरा प्रणाम। नमः ओम विष्णु पदाय कृष्ण प्रसाद भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नमः।
नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवाणी पाश्चात देश तारिणे।
So the speaker is Prahlad is Narada Muni.
तो इस श्लोक के वक्ता जो हैं वो नारद मुनि हैं।
He is recounting how those who became enemies of the Lord, they also achieved liberation.
तो नारद बता रहे हैं कि जो भगवान के शत्रु भी बने उनको भी कैसे मुक्ति प्राप्त हुई।
So everything in relationship with the Supreme Personality of Godhead is transcendental.
जो भी भगवान से संबंधित होता है वो सब दिव्य होता है।
Even the demons who tried to kill Krishna or Lord Vishnu, they are delivered.
यहाँ तक कि जो असुर लोग भी होते हैं जो भगवान को मारने की कोशिश करते हैं या विष्णु को मारने की कोशिश करते हैं उनका भी उद्धार हो जाता है।
In the previous purport, Srila Prabhupada points out Vairanabhubandena, meaning acting like the Lord's enemy, is also beneficial for the living entity. This is the
तो पिछले श्लोक में वीरानुबंधेना शब्द यूज हुआ है कि जो भगवान के शत्रु भी बनते हैं उनका भी उद्धार हो जाता है, ये उनका भी लाभ, उनको भी लाभ मिलता है.
So whether there in whether there's lusty desire, I'm reading from the purport to 38. Whether there is lusty desire, anger, fear, or envy of the Lord, somehow or other, as recommended by Srila Rupa Goswami, one should become attached to the Supreme Personality of Godhead.
तो यहाँ पे प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं, श्रील रूप गोस्वामी ने संस्तुति की है कि मनुष्य को काम इच्छा, क्रोध, भय या भगवान की इच्छा या किसी अन्य प्रकार से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से आसक्त हो जाना चाहिए.
They return back to home, back to Godhead, and ultimately achieve the goal of returning to the Supreme Personality of Godhead.
और अंततः भगवत धाम लौट जाना चाहिए.
What then is to be said of one who is related to the Supreme Lord, Personality of Godhead, as a servant, friend, father, mother, or conjugal lover?
तब ऐसे व्यक्ति के विषय में क्या कहा जा सकता है जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से दास, सखा, पिता, माता या प्रेमी के स्वरूप में संबंधित हो?
So even if one is hostile, they get this position as an eternal associate of the Lord if their minds are constantly fixed on the Supreme Lord.
तो चाहे कोई ईशा से भी आए तो भी उसे भगवान का परम धाम प्राप्त होता है अगर उनका सारा चिंतन भगवान में लगा रहता है.
Here Narada is discussing Shishupal.
यहाँ पे नारद मुनि शिशुपाल के बारे में बताते हैं.
From his very birth, Shishupal was obsessed about Krishna.
हमेशा शिशुपाल जन्म से ही कृष्ण के बारे में, कृष्ण से द्वेष करते थे.
As an infant, his very first words were blasphemy of Krishna.
वे हमेशा जन्म से ही कृष्ण की निंदा करते थे.
So day and night, his constant meditation was on Krishna.
दिन और रात वे हमेशा कृष्ण के बारे में ही सोचते थे, शिशुपाल.
So the verses that many other kings who act as the enemies of Krishna, they also attain salvation.
तो यहाँ पे अनुवाद में बताया गया है कि अनेक अनेक राजा जो कृष्ण के शत्रु बने, वे अपनी मृत्यु के समय मोक्ष को प्राप्त हुए.
Because they thought of the Lord.
क्योंकि वे हमेशा भगवान का चिंतन करते थे.
So this is Vishnu Smaranam or Krishna Smaranam.
तो ये कृष्ण स्मरण, स्मरणम और विष्णु स्मरणम है.
They even attain spiritual bodies.
और उन्हें आध्यात्मिक शरीर भी प्राप्त हुए.
The same forms as his. This is, of course, referring to Vaikuntha. This is not referring to Brajadam. This is referring to Vaikuntha. Forearm forms, in other words.
और उन्हें वैसे ही शरीर प्राप्त हुआ. ये वैकुंठ की बात करें, ब्रज की बात नहीं, जहाँ पे चार भुजाएं होती हैं.
Where there are only the Kastopa gem and Srivats, the hair on the chest of the Lord are the only ways of identifying the Supreme Personality of Godhead. Otherwise, everyone looks like him.
और विष्णु लोक में हर कोई भगवान की तरह लगता है, उनके जैसे कौस्तुभ भगवान के जैसे मणि है और भगवान के जैसे सबका शरीर होता है विष्णु लोक में.
So the verse is pointing out there's a type of worm captured by a black drone. Drone means a kind of a bee.
तो यहाँ पर एक भृंगी के बारे में चर्चा की है.
That attains the same type of body as the drone or the bee.
जिस प्रकार भृंगी द्वारा पकड़ा गया कीड़ा भृंगी का शरीर प्राप्त कर लेता है.
This is an example the Shastra is giving of the power of this meditating on the Supreme Lord that one becomes godly. This is the parallel here. Try to understand.
तो यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया शास्त्र में, जैसे कि अगर कोई भगवान पर ध्यान लगाता है तो भगवान जैसा बन जाता है.
The worm is meditating on the enemy.
तो जो भृंगी होता है वो अपने शत्रु पर ध्यान लगाता है.
And then it attains the same type of body as the drone or the bee or wasp that is after it is this by this meditation somehow or other.
और उसी प्रकार उसे भृंगी का शरीर प्राप्त हो जाता है.
So the demons attain the same type of body as the Supreme Lord by their meditations.
तो असुरों का भी वही भगवान जैसा शरीर प्राप्त होता है, जिस पर, और ये भगवान पर ध्यान लगाने के कारण होता है.
So in the Purport, Prabhupada explains the mystery of yogic meditation is explained here.
तो यहाँ पे प्रभुपाद तात्पर्य बताते हैं कि यहाँ पर योगिक ध्यान का रहस्य समझाया गया है.
In other words, one fixes one's mind exclusively on the Supreme Personality of Godhead. That is yoga, real yoga.
Yoga का मतलब है कि सिर्फ भगवान पर ही ध्यान लगाना.
Of course, nowadays yoga means to twist your body into jalebi.
तो यहाँ पर आजकल तो योगा का मतलब ये बताया जाता है कि अपने शरीर को अलग अलग ढंग से मोड़ना, जैसे जलेबी की तरह.
This is just yogic exercises. May be good for the health. It's good for the health.
योगा आसन लगाना शरीर के लिए लाभदायक हो सकता है.
It's not yoga dharma.
लेकिन ये योग धर्म नहीं है.
But there are many big, you know, famous yogis now who have thousands of followers and conducting classes in yoga and doing all these yoga asanas.
ऐसे बड़े बड़े योगी हैं जो बड़े बड़े जिनके हजार हजार फॉलोअर्स हैं और वो क्लासेस लेते हैं कई हजारों लोगों के लिए, उनको योग आसन सिखाते हैं.
You can become physically fit, your health will improve. This is really good.
इससे आप शरीर को तो लाभ मिलता है, आप स्वास्थ्य के रूप में बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं.
Well, it has nothing to do with spiritual life, it's a material.
लेकिन इसका आध्यात्मिक जगत से, आध्यात्मिक जीवन से कोई संबंध नहीं है.
You can't twist yourself on a jalebi and become spiritual. It doesn't work that way.
ऐसा नहीं, अपने अपने आप को जलेबी की तरह मोड़ लो और आप आध्यात्मिक बन जाओ.
It's not such a cheap thing.
ये इतना सस्ता नहीं.
You're going to become self-realized by twisting yourself into a jalebi. It's not so cheap thing to become self-realized by simply some physical exercises.
आप आत्मसाक्षात्कार को नहीं प्राप्त कर सकते अगर आप अपने शरीर को सिर्फ जलेबी की तरह मोड़कर आसन लगाते हैं.
So then the benefit is physical, practically speaking. इसका सिर्फ
शरीर को लाभ मिलता है, इसका आध्यात्मिक लाभ कोई नहीं है.
I mean, see, we know that sometimes devotees also practice yoga for health. There's no harm. You see, but devotees don't become confused. They know that this has to do with improving their health and has nothing to do with spiritual life other than improving the quality of health. That does have to do with spiritual life.
हम ये भी देखते हैं कि भक्त भी योगासन करते हैं, वो सिर्फ शरीर को स्वस्थ रखने के लिए होता है, उन्हें पता है कि इसका आध्यात्मिक जीवन से कोई संबंध नहीं है.
Amazingly, in the beginning of the first canto of Srimad Bhagavatam, the sages say, one should desire only good health.
तो श्रीमद् भागवत की शुरुआत में बताया गया है कि यहाँ पर साधु संतों ने बताया है कि हर किसी को एक अच्छे स्वास्थ्य या शरीर के लिए कामना कर सकता है कोई.
Normally this is taken as something mundane.
इसको एक एक भौतिक रूप में नहीं लेना चाहिए.
Health means this body.
शरीर मतलब स्वास्थ्य मतलब
शरीर. So this body is material. What's that got to do? Why are the sages opening Srimad Bhagavatam by saying one should desire only good health? It seems incompatible with this Bhagavad Purana high transcendental conception, yet they are speaking like this. They're saying, yes, you should desire. You can desire to be healthy. It is not material. Then how do we adjust this? How do we harmonize this?
तो हालांकि देखिए शरीर तो बहुत ही है, लेकिन भागवत पुराण जो दिव्य पुराण है उसमें भी ये बताया गया कि हर किसी को एक स्वस्थ शरीर की कामना करनी चाहिए. तो इसको कैसे एडजस्ट करेंगे? एक ये भौतिक शरीर है और पुराण दिव्य है.
How do we harmonize this? The material body is material. It's composed of earth, water, fire, air. It's definitely not, you know, a Satchitananda body that we have right now. We've got a material body and we've got lots of disease and aches and pains and so much troubles.
तुम्हारे भौतिक शरीर है, इसमें कई तरह के दर्द होते हैं, कई तरह की बीमारियां लगती हैं, और ये सच्चिदानंद बॉडी शरीर नहीं है. तो फिर
why are the sages saying one should have only good health? One should desire only good health. Isn't this contradictory?
तो फिर साधु ने ऐसा क्यों कहा कि ये हमें एक अच्छे शरीर की कामना करनी चाहिए? तो ये विरोधाभास नहीं लगता आपस
में? Loudly. Yes, that is the correct answer. If your health is good, then you can practice spirituality, he says, or Krishna consciousness.
तो इनका उत्तर है कि अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आप आध्यात्मिक कार्य में अपने शरीर को लगा सकते.
We see even in our own ashram that as soon as a devotee is unhealthy, and wreak havoc with their sadhana. They cannot perform proper sadhana even.
तो हम देखते हैं आश्रम में भी कुछ भक्तों की अगर थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं होता तो अच्छी साधना भी नहीं कर पाते.
Therefore, it is a spiritual desire to have good health. That's all right.
तो ये एक आध्यात्मिक इच्छा है कि अपने शरीर को स्वस्थ रखना.
Otherwise, the sages would not declare it.
नहीं तो साधु संत ऐसा क्यों कहेंगे श्रीमद् भागवतम में?
We have to. Actually, the body doesn't belong to us.
हालांकि ये शरीर हमारा नहीं है.
Like you go to the airport and you can rent a car. If you have a credit card, you can rent a car.
अगर आप एयरपोर्ट पे जाएं तो आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो फिर गाड़ी चला सकते हैं.
The Sanskrit word is the same. Whether you want to say car or you want to say vehicle, you want to say body, the Sanskrit word is the same.
इसका संस्कृत का जो शब्द है वो एक ही होता है, चाहे आप कार कहें या वाहन कहें या शरीर कहें.
Do you know the Sanskrit word, Prabhu? Do you know the Sanskrit word? You.
आपको संस्कृत वर्ड शब्द पता है?
What is the Sanskrit word?
संस्कृत शब्द शरीर कार और वाहन के लिए.
Body, vehicle. You could say car in modern terms even. All right. So who knows the answer? All right, Prabhu, what is the answer? Yantra. Arriba.
Arriba.
Go on, give it some gusto.
Jorki, jorki, karibhai. शरीर वाहन और कार के लिए एक ही शब्द यूज होता है संस्कृत में.
यंत्र means vehicle, vehicle.
यंत्र मतलब वाहन.
In the old days, it would mean chariot also.
पुराने समय में तो रथ भी होता था.
So we see in the illustration in the Bhagavad Gita how the jiva is riding on the chariot.
तुमने एक उदाहरण भगवद गीता में भी देखा है कि किस प्रकार जीव.
Of his body, basically, and senses.
जीव इस रथ पर
सवार है. So this concept of yantra is very important.
और उसमें उनकी इंद्रियां घोड़े के समान है.
But if you go to the airport and you rent a car,
लेकिन अगर आप एयरपोर्ट जाएं और वहां पर कार चलाएं,
do you have a right
कार उधार पर लें,
do you have a right to trash it? You can just smash it and trash it. Do you have a right to do that?
ऐसा आपके पास अधिकार प्राप्त होता है कि आप किराए पे कार लें और उसको फिर कहीं पर ठोक दें या कुछ कर दें उसको?
No, you have no right to do it. It doesn't belong to you.
आपका कोई अधिकार नहीं क्योंकि वो आपकी कार नहीं, आपने किराए पर ली है. तो ये यहाँ पर बताया गया.
It belongs to somebody else. It belongs to Hertz or one of these Avis, one of these rental car companies. It doesn't belong to you. You don't have any right to trash it.
तो वो कार आपकी नहीं है, तो आपके पास कोई अधिकार नहीं. ये कार ऑनर किया, उसके मालिक की है, तो आपको उसको भस्म करने का कोई अधिकार नहीं.
Then this ties in with the whole concept. Why is suicide a sin?
जैसा भी बता दें कि आत्महत्या भी एक पाप होता है.
Because you're destroying something that doesn't belong to you.
क्योंकि आप उस चीज को नष्ट कर रहे हैं जो आपकी नहीं है.
The body belongs to the Supreme Lord.
ये जो शरीर है ये भगवान का है.
The devotees know that, and the atheists they will never understand. It's not our property. It's a loaner car. It's on loan.
ये भक्त जानते हैं, लेकिन जो जो नास्तिक होते हैं वो इस पर विश्वास नहीं करते.
I've explained several times. In the West, you go to expensive auto mechanic.
आप अगर पश्चिमी देशों में जाएं, तो अगर किसी मैकेनिक की दुकान पर जाएं, ऑटोमोबाइल की शॉप पर.
And so they may keep your car for several days.
तो वो आपकी कार कई दिनों के लिए रखते हैं.
Big job.
क्योंकि इसपे कई ये बहुत बड़ा कार है.
Have to change the transmission or something. It's a major job, you know.
कुछ उसपे बदलना है तो उसमें भी बड़ा कार्य होता है, समय लगता है.
So they give you a courtesy car. They loan you a car.
तो वो आपको एक दूसरी गाड़ी देते हैं.
So then you're not without transport because in the West everybody has a car, you know.
ताकि आपके पास कोई साधन रहे यातायात के लिए.
So it's a loaner car. It's on loan.
तो वो कार उधार पे दी जाती है आपको.
You don't own that car. Once again, you can't go out and trash that car. It doesn't belong to you.
अब आप उस कार को ठोक नहीं सकते कहीं भी आके, ऐसे कुछ खत्म नहीं कर सकते. या उसको
criminal actually if you destroy it.
अगर आप उस कार को कष्ट या नुकसान करते हो उस कार का, तो एक ये
criminal बता जाता है. It becomes criminal. So Similarly, this body belongs to the Supreme Lord.
उसी प्रकार ये शरीर भगवान का है.
We have no right to destroy it. That's why suicide is such a great sin, because it does not belong to the person, you know, the word inhabit. The person who lives in the body, the person who is the driving force, the jiva, the life of that body. The body does not belong to that person. It is on loan from the Supreme Lord.
इसी प्रकार आप इस शरीर को खत्म नहीं कर सकते. इस शरीर को खत्म करना इसलिए पाप बता जाता है. जो जीवा होती है वो इस शरीर के अंदर रहती है. जिस प्रकार कार आपको एक लोन में मिली है उसी प्रकार आपको इस शरीर मिला है, आप शरीर के अंदर रहते हैं.
Through the agency of the modes of material nature.
और आप इस तीन गुणों के प्रभाव के अंदर रहते हैं.
But it's very interesting because when one becomes a devotee, then the body becomes spiritual eyes. Prabhupada used this word eyes, I-Z-E-D, eyes, spiritual eyes.
लेकिन जब आप भक्त बनते हैं तो आपका शरीर आध्यात्मिक बन जाता है.
Oh, our bodies, devotee body is also made of earth, water, fire, air.
हालांकि हमारा शरीर भी इस पंच भूत है. अग्नि जल
experiencing the threefold miseries, certainly.
और हमें भी यहाँ पर तीन तरह के ताप सताते हैं.
But is the body of a devotee the same as the body of a non-devotee?
लेकिन ये शरीर एक भक्त का शरीर और एक और भारी एक अभक्त का शरीर दोनों का बिल्कुल समान लगता है.
Even though the body of the devotee still has to pass through the niram.
एक भक्त के शरीर को भी मल त्यागना पड़ता है.
But is it really actually fully 100% mundane like the non-devotees?
लेकिन ये बिल्कुल क्या ऐसा है कि ये बिल्कुल
the answer is
एक अभक्त के शरीर की तरह बिल्कुल वैसी है.
The answer is that the body of a devotee is actually spiritual.
लेकिन इसका उत्तर यह है कि लेकिन जो भक्त का शरीर होता है वो बिल्कुल आध्यात्मिक होता है.
That's why people are always eager to touch the feet of devotees.
तभी लोग जो आते हैं वो भक्तों के चरणों को स्पर्श करते हैं.
They know that the body is of a devotee is not the same as the body of a non-devotee. Otherwise, why they're trying to touch your feet all the time? You see?
क्योंकि लोगों को पता है कि जो एक भक्त का शरीर होता है वो अभक्त के शरीर के जैसा नहीं होता. तभी तो लोग आते हैं और भक्त के शरीर के चरण स्पर्श करते हैं.
Actually, the body of a devotee is spiritual, and it's a matter of degree according to their adhikar, according to their level of spiritual advancement.
एक भक्त का शरीर आध्यात्मिक होता है और ये बिल्कुल इस पर भी निर्भर करता है कि भक्त ने कितनी आध्यात्मिक प्रगति करी है.
But the statements about devotees who just are wearing neck beads, for example,
जो भक्त कंठी माला जैसे पहनते हैं,
made of tulsi,
तुलसी की जो कंठी माला पहनते हैं जो भक्त,
such person is not ordinary.
वो व्यक्ति बिल्कुल साधारण नहीं है.
There are so many statements glorifying Shrimati Tulsi Devi.
जो कोई तुलसी देवी का गुणगान करता है.
For example, there is a statement.
उदाहरण के लिए कहा गया यहाँ पर.
Seeing that person who wears a tulsi necklace.
ऐसे व्यक्ति को देखना जिसने तुलसी की माला पहनी है गले में कंठी में.
Sinners are instantly freed from heaps of very fierce sins.
तो जितने भी पापी लोग होते हैं सभी तरह के पाप से मुक्त हो जाते हैं. ऐसे व्यक्ति को देखना जिसने तुलसी की कंठी माला अपने गले में पहनी है.
I'll read that again. Simply by seeing that person who wears a tulsi bead necklace.
सिर्फ ऐसे व्यक्ति को देखना, ऐसे भक्त को देखना जिसने अपने गले में तुलसी माला की कंठी पहनी है.
Sinners are instantly freed from heaps of very fierce sins.
एक पापी व्यक्ति जो ऐसा देखता है उसके सारे कई कई पाप उसके उसे नष्ट हो जाते हैं.
Even those committed during millions of previous births.
चाहे उसने पुराने कितने भी लाखों करोड़ों जन्मों में जितने भी पाप किए हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं.
You got that? Even, I mean, this is amazing. So this is why devotees should walk around with neck beads.
इसलिए भक्तों को कंठी माला पहननी चाहिए तुलसी की.
A devotee is spacing out, walking around. Maybe the devotee is dressed in karmic clothes, which is the very popular thing to do these days.
जैसे कभी-कभी भक्त भी कर्मी कपड़ों में होते हैं.
But if they're wearing tulsi beads, even if they're wearing karmic clothes, and people are seeing these tulsi beads, just see this amazing.
हालांकि भक्त ये कर्मी कपड़े भी पहने हो, लेकिन अगर उसने गले में तुलसी की कंठी माला पहनी है.
And amalaki also, amalaki, the amalaki fruit and beads are beads made from amalaki seeds, wood and so forth. They also considered as good as tulsi, you know, very high.
Amalaki seeds, जो एक उनको भी तुलसी के समान आंवला, उनको भी तुलसी के समान उच्च स्थान दिया गया.
So the author of this book I'm referencing, Tulsi Amrita, the Nectar of Srimati Tulsi Devi, compiled by His Holiness Bhakti Vishwambar Madhava Swami.
तो ये किताब है तुलसी अमृता, His Holiness Bhakti Vishwambar Madhava Maharaj ने इसको लिखा है.
He comments that Srila Prabhupada used to instruct that if one has to wear the dress of a respectable person, gentleman, in other words, if you have to wear a suit or tie, you're going out soliciting something, you're wearing non-devotee dress.
तो अगर मान लीजिए कोई भक्त जैसे कुछ बाहर की कर्मी ड्रेस पहन रहे हैं, सूट और टाई वगैरह.
Because they have to work outside of the temple.
क्योंकि उनको मंदिर के बाहर जाके काम करना होता है.
Still, one should always keep neck beads and disguise shikha.
लेकिन फिर भी हर किसी को गले में कंठी माला तुलसी की पहननी चाहिए और शिखा रखनी चाहिए.
So we should try to understand something about the power. What does it mean? You know, what does it mean even to associate with devotees?
तो हमें ये इसको समझना चाहिए, इसकी कितनी शक्ति है और इसका क्या मतलब है कि हम जब भक्तों का संग करते हैं.
The benefit that others who come in contact can't be estimated.
तो क्या लाभ प्राप्त हो सकता है जो भक्तों का संग करता है?
Here's another verse.
तो यहाँ पर एक और श्लोक है.
A little boy who is a devotee of the Supreme Lord.
एक जो छोटा बालक है और वो अगर भगवान का भक्त है.
Is superior to a man who has lived a very long but useless life. A little boy who is a devotee is superior to a man who has lived a very long but useless life.
और वो उस व्यक्ति से भी बहुत श्रेष्ठ है जिसने बहुत लंबा जीवन जिया है, वो छोटा सा बालक अगर जो भगवान का भक्त है.
No other tree, even of great importance, can be compared to Srimati Tulsi Devi.
कोई भी वृक्ष, चाहे वो जितना भी अपनी महान हो, अपने गणना के हिसाब से वो तुलसी के समान नहीं है.
This is from the Tulsi Mahatmya. It is from the 18th chapter of the Hari Bhakti Sudaya.
ये तुलसी महात्म्य और 18वें अध्याय भक्ति
part of the Narada Purana. So the glories, the title of this chapter is The Glories of Vaishnavas, Srimati Tulsi Devi, and so this connection we have to understand.
तो इस अध्याय का नाम है भक्तों की महानता, तुलसी की महानता.
No other tree, even of great importance, can be compared to Srimati Tulsi Devi.
कोई भी वृक्ष है अपनी कितना भी महान अपनी गणना से लेकिन वो तुलसी देवी के समान नहीं है.
And Brahma Vaivarta Vaivarta Purana.
ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताया गया.
This is discussed.
इसे ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताया गया है.
I take shelter of dearmost Srimati Tulsi Devi, who is known as such because in the whole universe there is no one equal to this goddess.
तो मैं तुलसी देवी की शरण प्राप्त करता हूँ और उनके समान कोई इस जगत में कोई देवी नहीं है.
She is considered beyond the goddess of fortune.
और वो लक्ष्मी देवी से भी श्रेष्ठ समझी गई.
This Srimati Tulsi Devi, whom Lord Hari happily accepts, Srimati a garland of Tulsi leaves.
जो तुलसी के पत्तों की जो माला होती है.
He accepts in preference to a garland of Parijata flowers. It is. He prefers a garland of Tulsi flowers, Tulsi leaves, rejecting a garland of Parijata flowers. He prefers a garland of Tulsi leaves to a garland of Parijata flowers.
भगवान तुलसी की जो माला होती है उसे स्वीकार करते हैं और परिजात फूलों से भी अगर माला बनी उसको नकार देते हैं.
So here is a narration about the importance of Tulsi.
यहाँ पर तुलसी की महानता के बारे में बताया गया है.
Please hear an old story in connection with the importance of Srimati Tulsi Devi.
तो यहाँ पर तुलसी महारानी की महानता के बारे में एक पुरानी एक कहानी बताई गई है.
There was a certain foolish twice-born Brahmana who supported himself by farming.
कुछ ऐसे मूर्ख ब्राह्मण थे द्विज बंधु जो अपने आप को खेती के द्वारा अपना निर्वाह करते थे.
But he disrespected spiritual practices.
लेकिन वो आध्यात्मिक अभ्यासों को नकारते थे.
Once he was desirous of collecting rice.
एक बार उनको जो चावल के चावल एकत्रित करने थे.
Like to eat boiled rice that was left overnight.
और जो पिछली रात छूट गए थे चावल उसको खाना चाहते थे.
He went from his home with a sickle that is a circular, semi-circular cutting knife.
तो वो अपने घर से गए और एक चाकू या जिसे कसोला जिसे काटते हैं वो लेके गए.
And then he went out to the forest and collected rice.
और फिर वो जंगल में गए वहां से उन्होंने चावल के ध्यान
Roaming there in a search of green vegetables,
और वे जंगल में हरी सब्जियां ढूंढ रहे थे.
He saw the immensely auspicious force of Srimati Tulsi Devi.
तो वहाँ पर उनको तुलसी देवी के.
It resembled an emerald. Emerald is a very bright, effulgent green gem.
तो उनको तुलसी देवी के पवित्र पौधे दिखाए गए जो बिल्कुल नीले तरह के एमराल्ड के समान थे.
Decorated in gold.
और वो सोने से सजे हुए थे.
And due to the tenderness of the plants, it was very pleasing to the mind.
और क्योंकि वो पौधे इतने नाजुक थे इसलिए उनको मन को बहुत भा रहे थे.
He greedily thought, if this Srimati Tulsi Devi proves edible, in other words, if I can eat it, if it's edible, you want understand the word edible. For either men or cows, there I shall be lucky, I will collect it.
तो उन्होंने सोचा कि अगर ये इनके तुलसी के तुलसी को खाया जा सकता है तो मैं अपने इसको इसको इसके इसको निकाल इसको
Nevertheless, having collected a little, today I shall give it to my neighbor.
और मैं अपने पड़ोसी को भी खिलाऊंगा इसके पत्ते.
Who desires it?
जिनको चाहिए होंगे इसको.
He may want to use it for some purpose.
और उनको भी किसी उद्देश्य के लिए चाहिए होंगे तो वो इसको इस्तेमाल कर लें.
By this divine arrangement, this was a moment when his predestined duration of life was to come to an end. In other words, at that moment he was going to die.
और हालांकि दिव्य दृष्टि से उसकी उसी समय मृत्यु हो जाने वाली थी उस व्यक्ति की.
The servants of death would mean the Yamadutas.
जो यमदूत होते हैं जो
They approach a snake situated nearby and spoke as follows. Oh, black snake,
bite. Can you repeat again? They approached a snake.
A snake. तो यमदूत
यमदूत एक सांप के पास गए.
They approached a snake situated nearby and said to the snake.
पास में और यमदूत
सांप. Oh, black snake, bite him quickly.
और यमदूतों ने कहा सांप को इसको जल्दी से काट लो इस व्यक्ति को.
This twice born deserves to be bitten by you.
यहाँ पे एक द्विजबंधु है जो आपसे ज्यादा आपसे आपके द्वारा काटा जाना है.
He should not touch Srimati Tulsi Devi.
और वह इस तुलसी देवी को नहीं छूना चाहिए.
For if he does, then we shall have no power over him.
अगर वो इस तुलसी महारानी को छूता है तो हमारे पर कोई शक्ति नहीं बचेगी.
Thus quickly instructed, the snake approached the twice-born farmer.
तो यमदूता ने सांप को कहा कि आप इस द्विजबंधु को जल्दी से काटिए.
Thus, by divine influence, although not knowing what was going on.
तो ये एक दिव्य रचना थी, लेकिन कुछ पता नहीं था क्या चल रहा है.
The farmer touched Srimati Tulsi Devi just a short moment. Before the snake approached him.
और उसके सांप ने तुलसी महारानी को छू लिया.
Interesting, huh?
सांप के काटे जाने से पहले.
Because of having touched Srimati Tulsi Devi.
और तुलसी देवी को उन्होंने छुआ उसके सांप ने.
Sudarshan Chakra, the disc weapon of Lord Vishnu.
सुदर्शन चक्र जो विष्णु का जो चक्र है
appeared for the protection arranged by the Lord.
वो उस किसान की रक्षा के लिए जो भगवान ने उनके लिए अरेंज किया था.
And remaining invisible, it followed the twice born Brahman, protecting him in all respects.
और सुदर्शन चक्र अप्रकट रूप में था और उस किसान के पीछे पीछे था उनकी रक्षा करने के लिए.
Just before this moment, the snake quickly hid inside the heavy bundle of grass that the Brahman was to carry.
और उसी समय जो एक घास का एक बंडल था किसान के पास उसी के अंदर सांप छुप गया.
The Brahman firmly tied the bundle of grass and prepared to leave the forest.
और ब्राह्मण ने उस किसान ने एक बंडल घास का बांधा था और उस जंगल से बाहर जा रहा था उसको अच्छी तरह बांधा था.
In order to kill the twice-born Brahman, as soon as he released Srimati Tulsi Devi,
तो जैसे उस किसान ने
the spying Tulsi Devi released. See, the Yamadutas were spying on the Brahman, waiting for when he would release Tulsi Devi. That was. Apparently, in the bundle of grass he had collected.
तो किसान ने अपने घास के बंडल में तुलसी देवी भी रखी थी और यमदूत ये देख रहे कि कैसे ये तुलसी देवी को छोड़े और सांप इसको काटे.
So the spying servants of Yamarsh were following the Brahman, waiting for when he was going to slip up and not be touching Tulsi Devi anymore.
और जब पीछे यमदूत के जो यमदूत थे वो ये देख रहे थे कैसे ये ब्राह्मण जैसे तुलसी देवी को छोड़े.
Not knowing what had happened. The Brahman lifting the bundle of grass along with the snake.
जो ब्राह्मण थे जो इस घास के बंडल को अपने ऊपर उठाए हुए थे और उसमें सांप भी था.
went home surrounded by Yamaraja's servants who were afraid of the dazzling disc. See, the Sushan Chakra was following along on account of Tulsi Devi.
Okay. के पीछे सुदर्शन चक्र था इसलिए वह जमदूत उनके पास वहां पर नहीं आए और ब्राह्मण के पास तुलसी देवी थी उस समय जब वो वहां से घर की तरफ गया.
The wonder was beheld or was viewed at the gate of the house by a worshipper of Lord Krishna. In other words, he was a devotee, therefore was able to see the Sudarshan disc and he could understand what was going on.
तो वहां पर एक अद्भुत दृश्य देखा गया था जो कृष्ण के भक्त वो वहां पर देख रहे थे.
The devotee said, "Why Srimati Tulsi Devi is there?" He knew that he was an unfit Brahmin. Why Srimati Tulsi Devi is there?
भक्त ने सोचा कि तुलसी देवी यहां पर कैसे है क्योंकि वो तो एक द्विज बंधु था.
There are extensive purports given here. Then, out of compassion towards him, the Brahmana began considering the ways. Wait a second, I must have missed a page. Out of curiosity, he asked the followers of Yamaraj, so this devotee could see the Yamadutas also. He could see the Sudarshan disc, and he could see the Yamadutas also.
तो भक्त ऐसे देख पा रहे थे कि सुदर्शन चक्र है, यमदूत हैं और तुलसी देवी भी हैं ऐसे.
He asked him about the meaning of what he saw. In other words, he saw the snake and the Sudarshan disc and the Yamadutas going after him, waiting for him to slip up. Somebody help him out. Help him out.
So Krishna Bhakti sabko dekh pa rahe the ki Tulsi Devi hai wahan par aur Sudarshan Chakra hai aur wahan par saap bhi hai.
So they offer obeisances to him and explained what happened and the reason for Sudarshan disc protection of the Brahmana.
और जबदूतों ने फिर प्रणाम किया और उनको पूरा समझाया कि क्या किस प्रकार वो उनके पीछे थे ब्राह्मण के पीछे और सांप के कारण उनकी मृत्यु होने वाली थी.
The Yamadutas informed the Vaishnava after the Brahman puts down the straw grass bundle and if he by chance moves far away from Srimati Tulsi Devi.
और जैसे यमदूतों ने कहा वैष्णव से कि जैसे उस किसान ने इस बंटू को नीचे रखा और दूर गया तुलसी देवी को रख के.
The snake may be able to bite him, bringing about his death.
और उस समय सांप उनको काटने वाला था उस किसान को और उनकी मृत्यु आने वाली थी.
And then we shall bring him to the board of Yamaraj.
और वे फिर जब लोग चले जाते.
I'm trying to understand, this is why when there might be 300-400 people in an audience, now you can understand, there might be 300-400 people in the audience, and Prabhupada is looking at the audience, and if he sees devotee without Tulsi neck beads, he says, where are your neck beads?
तो ऐसे प्रभा जब क्लास होते 300-400 लोग बैठे रहते थे और अगर प्रभा देखते थे किसी गले में कंठी माला नहीं है तो प्रभा पूछते थे आपकी कंठी माला कहाँ है.
He would order them to leave the assembly and put on the neck beads immediately.
तो तुरंत प्रभात कहते हैं कि किसी को कि इसको तुरंत कंठी माला पहनाइए.
So the Yamadutas are waiting for the Brahman to slip up and be out of association with Tulsi Devi. See?
तो यमदूत इस बात की वेट कर रहे थे कि कैसे वो तुलसी देवी को रखे और वो तुलसी देवी के संग से अलग हो जाए.
So the Vaishnava began. The Vaishnava, the devotee began to think, well, I've got to do something to save this Brahman because if he slips up, he's dead. This is his devotee, Paraduka Duki.
तुम्हारे भक्त ये देख रहे थे कि ये तुलसी देवी रखते हैं तो इनकी मृत्यु आ जाएगी.
So the devotee began speaking with the Yamadutas.
और फिर भक्त यमदूतों से ऐसा बोलने लगे.
As if he were ignorant.
कि जैसे वो बिल्कुल अज्ञानी है.
He speaks to Yamadutas, O great souls, O merciful messengers of the Lord of Death.
कि हे महान आत्माओं आप यमराज के द्वारा दूत हैं भेजे गए दूत हैं.
Please tell me of the means to save this twice-born Brahmana.
किस प्रकार मैं इस किसान दुष्बंधु ब्राह्मण जो है इसकी कैसे रक्षा कर सकता हूँ.
The Sudarshan Chakra will not protect him if by chance or by accident he releases Srimati Tulsi Devi.
कि सुदर्शन चक्र की इस किसान की रक्षा नहीं करेंगे अगर वो तुलसी देवी को किसी भी कारण से नीचे रख देते हैं.
You generous person, he's still speaking. The devotee is still speaking to the Yamadutas.
तो वहाँ पे भक्त यमदूतों से बात कर रहे हैं.
Out of kindness to me, told me about the danger of the snake for him. Srimati Tulsi Devi was brought for the sake of successful performance of my personal worship of my lords. So he's saying that, you know, by providence, this Brahmin has brought Tulsi for me to do my seva.
So ye Tulsi Maharani ko leke aaya taki kuch mere bhagwan ki hamare bhagwan ki seva ho sake.
Therefore, I beg you to protect him because he was bringing Tulsi Devi to give to this Vaishnav, you see.
Kyunki wo Tulsi Devi leke aaya tha is Vaishnav ko dene ke liye.
Then the Yamadutas said,
to kis prakar ko bachaya ja sakta hai? Fir Yamduto ne kaha,
O Lord, what is the use of our mercy? Just out of respect towards you, we, the servants of death, would run away. We would run away out of respect for the.
और फिर वो सामान क्योंकि सामान रखना चाहते थे वो वहीं से चले गए यमदूत.
Yamadutas continue, within an hour and a half from now his duration of life will be complete and he will die of a snake bite.
यमदूत वहां से चले जाएंगे लेकिन
but your worshipable Lord, in other words, Lord Vishnu, he's talking devotee. Your worshipable Lord Vishnu, the all-pervading Supreme Personality of Godhead.
तो ने कहा कि आप भगवान विष्णु के भक्त हैं और डेढ़ घंटे के बाद इस यमदूत इस किसान की मृत्यु होने वाली थी.
Longs for receiving, listen to this carefully. Longs for receiving an offering of Srimati Tulsi Devi.
तुलसी देवी की कामना करना उनको प्राप्त करने की इच्छा करना.
He can protect, therefore, this foolish Brahman.
और उस प्रकार ये इस मूर्ख ब्राह्मण की रक्षा कर सकते हैं.
Lord Vishnu constantly remains in the forest of Srimati Tulsi Devi.
भगवान विष्णु वहां पर निवास करते हैं जहां पर तुलसी देवी का के पौधे होते हैं.
Listen carefully. The Lord Vishnu is eagerly waiting, thinking.
भगवान विष्णु ये प्रतीक्षा करते हैं ऐसे सोचते हुए.
Will any fortunate person offer me just one leaf?
कि कोई एक भाग्यशाली व्यक्ति मुझे सिर्फ एक पत्ता तुलसी का अर्पित करे.
हरि बोल. If staying there in the forest of Srimati Tulsi Devi. To the husband of the goddess of fortune, then the Lord's personal weapons, the Sushan Chakra, at that very moment would undoubtedly burn us into ashes, the Yamadutas are saying. You know, Yamadutas continue. I'm aware of that. Thank you very much. The Yamadutas continue, we have no power over anyone, pious or sinful.
Yamduto ne kaha ki hamare paas koi shakti nahi hai chahe wo ek punya atma ho ya papi atma ho.
Who worships Lord Hari.
जो भगवान हरि की का की पूजा करता है
श्रीमती तुलसी देवी,
तुलसी देवी के साथ.
At the time of death,
और मृत्यु के समय
that devotee,
वो भक्त
who is worshiping with Tulsi Devi,
जो तुलसी देवी के साथ भगवान की पूजा करता है,
is carried away by the messengers of Lord Vishnu,
और विष्णु दूतों के द्वारा ले जाया जाता है.
We do not know for what reason.
हम ये नहीं जानते कि किस कारण से
Lord Hari, who is so dear to Srimati Tulsi Devi,
जो भगवान हरि हैं, जो तुलसी देवी के बहुत
follows protecting anyone who carries her in his hands.
उस व्यक्ति की रक्षा करते हैं जो तुलसी देवी को हाथ में लिए होते हैं.
So even at the Madhava Maharaj points out that even a dying animal can get liberated.
चाहे यहाँ पर माधव महाराज लिखते हैं कि कोई मरता हुआ जानवर भी अगर तुलसी देवी के संपर्क में है तो उसकी रक्षा होती है.
There was one Brahmin who used to keep a Tulsi Devi on his ear.
एक ब्राह्मण अपने कान के इधर कान पर तुलसी देवी रखता था.
Upon meeting a just hit and dying animal, the animal had been hit by a vehicle or something, and it was dying.
और समय एक जानवर टकराया किसी वाहन से और वो मर रहा था.
He took the tulsi leaf off of his ear.
उसने अपने कान से तुलसी का पत्ता निकाला.
And put it in the mouth of the dying animal.
और उस जानवर के मुंह में डाल दिया.
So in this way, the animal attained salvation.
और इस प्रकार जानवर को भी मुक्ति प्राप्त हुई.
Anyways, there's much more to the story. We can continue some other time.
तो इसमें कहानी बहुत कुछ है. कभी किसी और दिन बताएंगे हम आपको.
भगवत प्राण की जय. श्रीमती तुलसी देवी की जय. नीता गोप्रेमनंदी हरि हरि बोल. श्री प्रभुपाद की जय. गोप्रेमनंदी.